ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं और आज तीसरा रविवार भी है तो थर्ड संडे रो ये शाम को 6:30 से 8 बजे तक यहाँ ओम शांति भवन में हम सब मिलकर योग करते हैं तो यहाँ ही पहुँचेंगे 6:30 बजे शाम को। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली भी बहुत विशेष है। बाबा हम बच्चों को किस रूप में देखते हैं, आज बाबा ने हम बच्चों को 3 रूपों में देखा। 3 तख्तनशीन रूप में देखा। कौन से 3 तख्तनशीन रूप में देखा? एक बाबा कहते हैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त नशीन पर अगर सदा स्थित हैं तो क्या अनुभूति होगी। फिर दूसरा तख्त है बाबा का दिल रूपी तख्त। तो अकाल तख्त पर अगर सदा विराजमान है तो दिल तख्त पर भी जरूर विराजमान होंगे। तो दिल तख्त पर विराजमान होने से क्या लाभ होता है वो भी बाबा ने बताया। और फिर बाबा कहते हैं भविष्य में विश्व राज्य तख्त, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। और उस दिन बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत। तो विश्व का राज्य किस आधार पर मिलता है वो बाबा ने आज बताया। और उस विश्व राज्य में भी कैटेगरीज तो है ना, तो वो भी बाबा ने बताई है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, काफी लंबी मुरली है। आज 17/11/2024 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/11/2002 की। 30/11/2002 रिटर्न शब्द की स्मृति से। रिटर्न शब्द में 2 अर्थ आते हैं। तो रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो, एक अर्थ है। बाबा ने इतना दिया है उसका रिटर्न हम क्या करेंगे, क्या देंगे? बाप समान बनकर दिखाएंगे, ये है बाबा को रिटर्न देना। तो एक अर्थ है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और दूसरा अर्थ है रिटर्न का, रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न माना वापस, वापस लौट रहे हैं। तो हम जहां से आए हैं वहां वापस जाना है, ये हमारी रिटर्न जर्नी है। घर से आए हैं तो घर वापस जाना है। तो रिटर्न शब्द की स्मृति की, रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन और विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में, भगवान का दिल तख्त जीतना ये बहुत बड़ी बात है और इस समय ही हम जीत सकते हैं। तो परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, हा? केवल संगम युगी ब्राह्मणों को ही परमात्म दिल तत्व प्राप्त होता है। भ्रकुटी का तत्व तो सर्व आत्माओं को है, हर एक आत्मा अपने अपने भ्रकुटी में विराजमान है, सब शरीरों में। तो भ्रकुटी का तत्व तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तत्व ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। चढ़ता है नशा, ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी भगवान का दिल तख्त प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। अब कैसे दिल तख्त पर हम विराजमान हो, तो उसके लिए बाबा ने बहुत स्मृतियां दिलाई है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हरेक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। जब आपके हम सबके गले में स्वराज्य अधिकार का हार पड़ा है, स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। जन्म से ही हमें मिल गया, जैसे ही ब्राह्मण बने हमें स्वराज्य का अधिकार मिल गया। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, किसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी? जो अपने इंद्रियों का राजा हो, मन का भी राजा हो, सबके दिलों का भी राजा हो, वही स्वराज्य अधिकारी है, फिर वही विश्व का राज्य अधिकारी भी बनता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, दिल में ये दृढ़ संकल्प है। कौन सा दृढ़ संकल्प? कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये स्वराज्य अधिकार मेरा कोई छीन नहीं सकता है। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी है। ये नशा लाना है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की दिल ही महान गाई जाती है, है ना? तो दिल तख्त नशीन बनना है तो दिल का तो बड़ा महत्व है। मानव जीवन में भी अगर दिल का धड़कना बंद हो गया, खत्म, हाँ सब खत्म, फिर दिल के बाद फिर दिमाग, तो दिल की धड़कन से ही दिमाग तक खून पहुंचता है। अब दिल की धड़कन ही बंद हो गई तो दिमाग तक खून कैसे पहुंचेगा? फिर खत्म। तो बाबा कहते हैं, मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं, भगवान के दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं जो दिल तख्त नशीन बनती है वही विश्व राज्य अधिकारी बनती है, और फिर वही आत्माएं विशेष आत्माएं गाई जाती है विश्व में, भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में भी सिमरी जाती है, और वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन है? कौन है? हाँ, नशे से कौन हम? कौन है? हाँ, हाथ उठा, हम, हाँ हाथ उठा, हाँ ये नशा चढ़ाओ, वो हम है। वो कौन है? आप हो? फिर बाबा पूछते भी हैं, कोई तो ही चकते होंगे ना, पता नहीं हो या नहीं, तो बाबा पूछते हैं आप हो? पांडव भी है, माताएं भी है, सब दिल तक मशीन है। तो सब हाथ, सबने हाथ उठाया और बाबा को हिलाने लगे, हाँ बाबा को बताने लगे। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? अरे भगवान ने इतना बड़ा दिल तख्त हमें दिया है और उसको छोड़कर मिट्टी में, बाबा कहते हैं कि देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह तो मिट्टी है ना। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके, उनको माँ बाप कभी मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं। तो कहाँ उनको बिठाते हैं? तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तीन स्थान मिलते हैं बच्चों को जो लाडले बच्चे होते हैं, कौन से? वो तख्त पर, हाँ कोई कुर्सी पर बिठाएंगे या कहीं बिठाएंगे, या तो गोद में या अति इंद्रिय सुख के झूले में, झूले में, गोद में या कोई ऐसे स्थान पर, मिट्टी में नीचे नहीं बिठाएंगे। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो? झूलते हो? फिर बाबा पूछते हैं, मिट्टी में तो नहीं जाते? मिट्टी में जाना माना देह अभिमान में आना, और देह अभिमान में भी एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं, मिट्टी में तो नहीं जाते हो? कभी कभी दिल होती है क्या? मिट्टी में पांव रखने की दिल होती है क्या? क्योंकि 63 जन्म तो मिट्टी में ही पांव रखते हैं, देह अभिमान के वश है तो जैसे मिट्टी में पांव रखते हैं, मिट्टी से ही खेलते हैं, देह को ही देखते हैं, देह अभिमान में आते हैं और देह अभिमान में आकर क्या क्या कर्म करते हैं, तो मिट्टी से ही खेलते हैं। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, बाबा के बच्चे बने तो मिट्टी से तो नहीं खेलते। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है या नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है, हाँ बाबा जानते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं बच्चे, माना कभी कभी मिट्टी में पांव चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है, देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव रखना है, देह भान तो है ही है, तो हाँ शरीर कोई भूलता नहीं है, लेकिन देह अभिमान तो जैसे गहरी मिट्टी में पांव रखना है। लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी, और सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे, क्योंकि दोनों ही युगों में राज घराना तो चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं, अगर जितना ज्यादा समय तख्त नशीन होंगे यहाँ, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो क्या होगा? तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, है ना, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये एक दो के पीछे आएंगे तो वो तो होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से लेकर जब से आप जन्म लिए हैं, ब्राह्मण बने हैं, वो आपका संगम युग का आदि समय हो गया। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, किसको ज्ञान में 10 साल हुए हैं, चाहे किसको 50 साल हुए हैं, चाहे 66 साल भी हो गए, क्योंकि 2002 माना 66, कितने साल हो गए, 36 से गिनती करो तो 66 साल हो गए। लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे, क्योंकि स्वराज्य तख्त नशीन है तो दिल तख्त तो जरूर बनेंगे ना। तो स्वराज्य दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे कितना समय, बहुत काल रहा। फिर चले, एक है बहुत काल, दूसरा निरंतर रहा या कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा, अब सुनो परमात्म तख्त नशीन की निशानियां क्या होगी, जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। तख्त पर बैठा है ना, भगवान के दिल तख्त पर बैठा है तो वो बेफिक्र बादशाह होगा। अब बाबा ने बेफिक्र बादशाह का दो रूप बताया है, तो प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। उसके चेहरे पर कोई गमगीन बने के या चिंता की रेखाएं नहीं होगी, बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है ना, अपने मन में भी वो जो बोझ है आपके, कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो मन में तो आता ही है, लेकिन सूक्ष्म बोझ भी मन में होता है, अपने व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, क्या क्या संकल्प चलते हैं, वो बोझ तो होता ही है बाहर की दुनिया का, वो तो मन में होता ही है, लेकिन ये भी कोई कम बोझ नहीं है व्यर्थ संकल्प, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में भी होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा जो बाबा के दिल तख्त नशीन होगा। फिक्र है बोझ, कोई चिंता है तो वो बोझ है, बेफिक्र है तो डबल लाइट है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का ही बोझ होता है ना, हाँ ये मेरी सेवा, ये मुझे कंप्लीट करना, ये पूरा करना है, तो चाहे बोझ किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, और जो संबंध संपर्क में आते हैं उनका भी बोझ होता है ना, चिंता होती है, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, हाँ वो भी बोझ नहीं होगा अगर वो बाबा के दिल तख्त नशीन है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच नहीं चलेगा, क्योंकि ये सोच आया माना चिंता है। लेकिन और क्या क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, ये सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है। प्लान बनाते ना, ये करना है, ये करना है, ये सोचना, ये प्लान बनाना अलग चीज है, वो चिंता नहीं है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी क्या होगी, सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। जिसके सिर पर बोझ होगा उसको जरूर थकावट तो लगेगी ना, तो वो बोझ के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, तो बहुत काम किया तो ऐसे थकावट होती है, पर वो बोझ नहीं है, तो थकावट होना अलग चीज है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। अब थकावट कैसे होती है, बोझ के रूप में, हाय मैं तो थक गया, और थक गया और एकदम मुरझा जाना, तो ये है थकावट का बोझ। तो थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और जो बेफिक्र बादशाह होगा, बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं है, हाँ वो जो बेफिक्र बादशाह सचमुच है उसको बोझ नहीं लगेगा, लेकिन बाबा उसका दूसरा भाव भी बताते, कई है ना अलबेले समझते मैं तो बेफिक्र बादशाह हूं। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रही हो अलबेलापन और कहे कि हम तो बेफिक्र रहते हैं, भाई ये काम किया अरे मैं तो बेफिक्र बादशाह हो जाएगा। अरे करना है तो करना है ना, ऐसे थोड़ी है मैं बेफिक्र बादशाह हूं। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि अलबेले रही हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। सेल्फ मैनेजमेंट में ये सिखाते हैं, एक है इम्पोर्टेंट महत्व का वो काम है और दूसरा है अर्जेंट। तो पहले कौन सा काम करेंगे हाँ? अर्जेंट। लेकिन वो अर्जेंट क्यों होना चाहिए? अगर उसको इम्पोर्टेंट समझा महत्व का समझा तो पोस्टपोन क्यों करेंगे, उसको छोड़ेंगे कि वहां कल करेंगे। इम्पोर्टेंट है ना, बहुत काम की बात है, तो वो अर्जेंट कभी नहीं बनेगा। अर्जेंट तब बनता है जब उस इम्पोर्टेंट को हम पोस्टपोन करते हैं, कल करेंगे। तो अर्जेंट होना माना अलबेलापन है। इम्पोर्टेंट जरूर है, उसको महत्व दो। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है, तीव्र पुरुषार्थी भी यही कहेगा और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, इसलिए छोड़ेगा नहीं, वो करेगा, पता है उसको कि सफलता मिलेगी। तो हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। बाबा कहते इनमें सावधान हो जाओ, ये दो रूप माया का पेपर है आपके सामने। एक है व्यर्थ संकल्प, भले विकल्प नहीं है पर व्यर्थ संकल्प है, और दूसरा है ये माया का कौन सा रूप है, दूसरा संकल्प है मैं ही राइट हूं। अब दूसरा कुछ उसको कोई चेतावनी दे रहा है, कुछ कह रहा है, भाई ये ठीक नहीं है, नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो राइट हूं। अब ये भी तो दे अभिमान है ना, मैं ही राइट हूं, जो किया जो कहा जो सोचा हाँ ये सब मैं राइट हूं, मैंने जो कुछ किया जो कहा जो सोचा, मैं कम नहीं हूं, मैं राइट हूं, मैं सही हूं। तो बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, मैं सही हूं माना ये मुझे बदलना ही नहीं है, मैं जो हूं सब ठीक हूं। लेकिन कोई कह रहा है कि भाई ये बदलो नहीं तो इसका नुकसान होगा, तो बदलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं पर वो कहे मैं ठीक हूं, तो बाबा कहते हैं बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का स्नेह का सहयोग का रिटर्न करना है। बाबा ने इतना हमें दिया है, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न करना अर्थात समान बनना, और दूसरा रिटर्न का अर्थ दूसरा अब हमारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न माना वापस, तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। क्या साधन है? हर संकल्प बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलाओ। ये संकल्प ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, वचन बाप ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, कर्म ब्रह्मा बाप के हो सकते हैं, तो टैली करो, मिलाओ। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। बस बाबा ने जो किया कहा सोचा वही मुझे करना है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं कोई नया सोचना है नया करना है। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर तो सहज हुआ ना। अच्छा टीचर्स हाथ उठाओ, बाबा के सामने वो टीचर्स बैठी थी। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? तो सबने कहा, तो अभी कुछ ने सोचा क्या कहें, तो बाबा ने फिर कहा सहज है ना, बस फॉलो करो, पहले चेक करो। ऐसे नहीं फॉलो करो माना ब्लाइंड फेथ के रूप में, पहले चेक करो। जैसे कहावत है, कहावत है, कहा जाता क्या कहा जाता है, कहा जाता है सोच समझ कर करो, कहावत है ना। तो पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। बाप समान है ये पता भी कैसे चले? बाबा ने किया वो तो बाबा ने तो श्रेष्ठ किया, लेकिन पता कैसे चले? तो उसके लिए पहले सोचो फिर करो। वैसे कहावत क्या है, सोच समझ कर करो, पहले सोचो फिर समझो इसका नतीजा क्या होगा और फिर करो। पर जो देह अभिमानी होगा वो सोचे समझे बिना पहले कर लेगा और फिर करने के बाद समझेगा ये गलत किया, फिर सोचेगा अभी क्या करूं, तो टू लेट हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे कहावत है पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। इंग्लिश में कहावत है लुक बिफोर यू लीप। अब एक पहाड़ पर चढ़े हम, चढ़े अब हमको आगे बढ़ना है और हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी खाई है, अगर एक कदम भी आगे रखेंगे तो फिर आगे थोड़ी बढ़ेंगे, वहीं रुक जाएंगे ना। तो देखो पहले, अगर छलांग मारने से पहले देखो कि ये क्या है आगे। तो बाबा कहते जैसे कहावत है पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, ये तो 30/11 है, केवल एक ही महीना है 12वां मंथ 2002 का। तो बाबा कहते हैं अब इस वर्ष का लास्ट मंथ है महीना, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने के पहले क्या करना है। अभी भी देखो नवंबर है ना, अभी दिसंबर एक ही महीना है, 2025 शुरू हो जाएगा, अब उस नए साल में क्या करना है। तो नए आने से पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप माना बस कदम पर कदम रखना, बाबा ने जो कदम रखा उसके ऊपर कदम रखो। बस कदम पर कदम रखना तो इजी है ना, बस उनके कदम पर अपना कदम रखो। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे। ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द याद रखने हैं, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण भी बनना है और निमित्त ही समझना है, ऐसा बाबा का मेरा कुछ नहीं है। तो निमित्त और निर्माण, तो नम्र भी बनेंगे और न्यारे भी बन सकेंगे। तो निमित्त रहे ऐसे, तो बाप समान निमित्त और निर्माण रहे ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, बस निमित्त हूँ कह दिया तो निमित्त का दूसरा अर्थ भी हो जाएगा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर निमित्त का भाव है निर्माणता के साथ, निर्माणता के साथ कि हाँ मैं तो बाबा का है मेरा नहीं तो अभिमान नहीं आएगा। तो सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, अब सेंटर इंचार्ज है तो समझते मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, ऐसे तो नहीं है ना। तो वो निमित्त समझती है मैं इंचार्ज हूँ, जिम्मेदार हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, पर देखने वाले तो देख रहे हैं। मधुबन में भी, मधुबन भी शीश महल है, जो कुछ भी हम करते हैं सबको पता चल जाता है, ऐसे नहीं कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता यहाँ। तो बाबा कहते हैं दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के भी संबंध संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण, हम्बल नम्र, जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में, महान रूप में अभिमान नहीं, लेकिन सूक्ष्म तो रोब होगा ही, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही तुमको करना है, ये तो रोब तो होगा ही ना भाई, मैं आपको कहती हूँ फिर आप जानो। तो ये हो गया भाई हमारी निर्माणता। तो महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा, ये रोब ये भी अभिमान का अंश है, बॉसी नेचर होता है ना कईयों का, जिद्दी भी होते हैं वो, बॉसी भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अभिमान का अंश है, और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीन शब्द याद रहते हैं, निराकारी निरअहंकारी वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर पक्का रहा ना, फॉलो फादर। अब अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है, तीन शब्द निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, ये सदा याद रखो। अंश में भी न हो अहंकार या और विकार, कुछ अंश में भी न हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है लेकिन अंश भी नहीं हो किसी भी विकार का, अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखो, ठीक है। अच्छा मुरली इतनी ही है, अब बाबा के सामने बहुत डबल विदेशी आ गए हैं, तो डबल फॉरेनर्स उठो बाबा ने उनको कहा। तो अच्छा ग्रुप आया है, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर बहुत खुशी है। कौन सी बात? बाबा सदा खुश होते हैं डबल फॉरेनर्स को देख, एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो, डायरेक्शन मिला कि इस टर्म में भी आना है तो पहुंच गए ना। अब क्या हुआ कि विदेशी कई बार जब आते रहे ना, अभी तक तो यही था अक्टूबर में खूब आ जाएंगे, नवंबर में कोई आते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे, तो फिर अक्टूबर में इतना वो इतनी रश हो जाती थी, दिसंबर में ज्यादा आए, फिर फरवरी मार्च में तो इतने आ जाते थे तो यहाँ रहने की जगह नहीं, तो सबको डिवाइड करके दिया है। अभी उनको भी ग्रुप्स दिए, जैसे भारत वालों को दे रहे ना, विदेशियों को भी ऐसे ही दिया कि नवंबर में भी आपको आना है। फिर वो जनवरी में आ जाते थे, तो जनवरी में नहीं आते थे, तो फिर फरवरी मार्च में बहुत आ जाते थे, उनको कहा नहीं अभी जनवरी में भी आना है। हर ग्रुप में उनको डिवाइड करके दिया है कि कम से कम 400-500 तो आए हर ग्रुप में, तो इस बार भी देखो उसी अनुसार ही आए हैं, भले नवंबर का महीना है। तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन मिला कि इस टर्म में ही आना है तो पहुंच गए ना, कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। अभी वियतनाम का ग्रुप आया है, कितने पता नहीं 60 से भी ऊपर भाई बहन, एक वियतनाम का ही ग्रुप है, और वहां से भी आया है, थाईलैंड से भी इतना बड़ा ग्रुप आया है। उनको कहा, उन्होंने कहा कि आपको इसी ग्रुप में जाना है, तो कैसे भी करके बड़ा ग्रुप ले आए ताकि 400-500 के अंदर ही सब समा सके। तो बाबा कहते हैं कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है, दादी का डायरेक्शन ठीक माना है, इसकी मुबारक हो। बाबा ने डबल विदेशियों को मुबारक दी। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है। कोई कहे मैं स्टेज पर आऊं और बाबा से दृष्टि लूं, बाबा तो कहते बाबा कहां भी हो बाबा की दृष्टि आपको पहुंचेगी। और सचमुच ऐसे हुआ। एक मिसाल देती हूँ, एक बहन का, वो बिल्कुल लास्ट में बैठी थी, एकदम जो लास्ट का दरवाजा है ना, ओम शांति भवन की बात है, लास्ट में बैठी थी और बाबा की दृष्टि सब पर पड़ रही थी। तो उस समय सोच रही थी वो कि पता नहीं बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, यानी मैं तो इतना दूर बैठी हूँ। तो उसी समय बाबा ने कह दिया, वो जो आखिर में बैठी है बाबा उसको भी दृष्टि दे रहे हैं। अरे उसको इतनी खुशी हुई कि बाबा को मेरा संकल्प पहुंच गया। वो आकर के हमें बताया, तो मैंने कहा देखो आपका संकल्प बाबा को पहुंच गया ना, वहां से पत्र लिखते हैं बाबा को, आपका पत्र का जो संकल्प है वो पहुंच गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, बाप दादा एक एक को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हांजी का पाठ भी अच्छा पढ़े हुए, वो सबको हम कहते थे, जब बाबा प्रश्न करते थे तो कोई हाँ कह देते थे तो उनको कहा हांजी बोलो, खाली हाँ नहीं, हांजी, तो सब जोर से हांजी कहते थे। तो डबल फॉरेनर्स हांजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है। खाली प्यार नहीं है, नाज भी है, नशा है डबल फॉरेनर्स का। क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। ये तो विश्व में संदेश कैसे पहुंचेगा, भारत वाले थोड़ी जा सकते हैं सब जगह। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है, बाबा ने पूछा, जयंती से पूछा होगा या दादी से पूछा होगा। गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है, कोई किसी देश में बाबा की सेवा न हुई हो, कौन सा स्थान रहा हुआ है? तो किसी ने कहा मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए, ये जो अरब देश है ना मिडिल ईस्ट के, उस वो कुछ देश रहे हुए हैं। तो फिर भी देखो ये भी ग्रुप जो आ गया, जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है। अभी मिडिल ईस्ट के आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत लोग आ रहे हैं, जो खास अरब देश है, हाँ, ऐसे बारेन और कुवैत और कतार और अबू धाबी, दुबई, ये सब जो यूएई, वो बहुत है वहां देश, मस्कत, ये सब मिडिल ईस्ट के देश है, ओमान, तो वहां से आ रहे हैं। अभी 20 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। कईयों को आप देखेंगे बुर्का पहन करके भी आते हैं। वहां मैं गई थी, कहाँ गई थी, अबू धाबी गई थी, तो वहां पर आते हैं वो, ज्ञान में चलते हैं। तो एक बहन थी जो घर से आती थी काला बुर्का पहनकर, और सेंटर पर सफेद बुर्का रख दिया था, तो वो चेंज करके सफेद बुर्का पहन करके क्लास में बैठती थी। बहुत प्यारी बहन थी, यहाँ भी आई हुई है। तो अभी आ रहे हैं कम से कम 150 अभी मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ लोग आ रहे हैं, 150 जितने आ रहे हैं। 20 तारीख को पहुंच जाएंगे, आज क्या है, आज है 17 तारीख, 20 तारीख तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो किसने कहा बाबा मिडिल ईस्ट के कुछ देश बाकी है, फिर भी देखो ये भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है। हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। अब कुमार भी बहुत आ गए थे बाबा के सामने, तो बाबा कुमारों को संबोधन कर रहे हैं। मधुबन के कुमार भी हैं और भी बहुत कुमार आए हैं। मधुबन में तो कुमारों का तो झुंड ही है। मधुबन निवासी भाई, देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का ही है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही। किसने कहा होगा ब्रह्मा कुमार? बाबा ने कहा वो तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। कुमारों की ये विशेषता है, अशांति जहां होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। बहनें जो नहीं उठा सकती भाई को बुलाएंगे, लाओ भाई ये उठाओ, तो भाइयों में तो ज्यादा होती है ना ताकत हाथों में। तो बाबा कहते हैं कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क कौन सा है? सबसे मुश्किल से मुश्किल काम अशांति को मिटाए शांति दूत बन शांति फैलाना। ये सबसे मुश्किल काम है इस कलयुगी दुनिया में। ऐसे कुमार हो अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले कहां भी आग होती है तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, तो सबने सिर हिलाया, पक्का पक्का पक्का। हाँ, तीन बार बाबा ने कुमारों से पूछा, पक्का शांति दूत हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है, क्यों बाबा कहते दिल्ली में राष्ट्रपति के पास जाओ प्रधानमंत्री के पास जाओ, क्योंकि क्या है जो कुमार होते ना, तो से कश्मीर में भी उनको पत्थर देते थे, अब ये पत्थर मारो, तो पत्थर मारने वाले बन गए थे। तो फिर कैसे उनको छुड़ाया पत्थर मारने से, आपको हम 500 रुपया देंगे आप पत्थर मारो, ऐसे करते थे ना। तो कुमारों को देते थे, न्यू ब्लड है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जो शांति दूत बनकर के जाएंगे और फिर क्या दिखाएंगे कि हम शांति फैलाने वाले हैं, पत्थरबाज नहीं है हम, अशांति फैलाने वाले नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है ये कुमार, ये यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले हैं, डरती है कुमारों से, सरकार भी डरती है अगर ये यूथ ऐसा घमसान कर ले तो। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार व शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, वो गवर्नमेंट स्वागत करे उन कुमारों का, क्योंकि ये लड़ने वाले कुमार नहीं है। तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना दिल्ली में करना, करना है ना, दादियां करेंगे? हाँ करेंगे ये कुमार, दादियों से बाबा पूछते हैं। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, कितने कुमार होंगे बाबा के बच्चे? तो बाबा ने पूछा विश्व में कितने होंगे कुमार, तो उस समय किसने कहा, बाबा 1 लाख है, 1 लाख कुमार बाबा के बच्चे। तो कुमार करो कमाल, हाँ कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट ने जो कुमारों यानी युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वो सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं, चलो बाहर तो अशांति नहीं पर मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं शांति कुमार हूँ शांति कुमार हूँ, ये बोर्ड कोई लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है, ठीक है ना। फिर कुमारियां भी बहुत आई थी तो बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं, वहीं पर को उठा देते थे बाबा सभा के अंदर ही, तो कुमारियां भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है, नौकरी करने वाली है या विश्व सेवा करनी है, ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है, नौकरी या टोकरी, और विश्व सेवा करना माना ताज सिर पर रखना, तो ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है, क्या रखना है। देखो सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे, 21 कुल माना आधा कल्प हो जाएंगे, तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई कल्याण हाथ उठाओ सब, 21 कुल का अध्याय उद्धार करेगी। यहाँ देखो बहुत कन्या यहाँ भी है, एक परिवार का नहीं 21 परिवारों का उद्धार करेंगी। देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि ये रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है जो खींच रहा है उनको। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ, समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल हैं, ठीक है ना। रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो हो जरूर लेकिन और बनो, तो थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है, मुरली सुनाने का तख्त मिल जाता है ना कुमारियों को, देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा फिर उस समय बाबा ने, बाबा के सामने मीडिया के भाई बहने आए थे, मीडिया विंग की मीटिंग होगी तो मीडिया के 108 रतन आए हैं, 108 भाई बहने आए हैं मीडिया विंग की सेवा वाले। अच्छा है मीडिया वाले कमाल करके दिखावे जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, मीडिया माना मीडियम बन करके आवाज फैलाना, तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, वहां भी कर रहे वहां भी होता है। अच्छा है भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है, हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन ये देखा कि वर्ग अलग अलग होने से, हाँ ये वर्गों की सेवा जो हुई ये जगदीश भाई ने शुरू की थी, जगदीश भाई को आया कि अभी बाबा की सेवा तीव्र गति से होनी चाहिए, तो उसने कहा एक एक विंग बनाओ, तो कैसे अभी 20 विंग्स है और उसमें कितनी सेवाएं हो रही है। तो लेकिन देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं, अच्छा है रीस नहीं करना, ये करता है मैं भी करूं, वो करता है मैं भी करूं, वो रीस नहीं मुझे करना है बस, अच्छा है रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी एक ट्रांसपोर्ट वालों ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रचा है, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना तो स्टेशन पर आवाज आती है ना, तो आवाज क्या आती है, यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान दे। तो इस नाम से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, यात्री कृपया ध्यान दे। तो वो पूरा उसमें बाबा का ज्ञान, यात्री कृपया ध्यान दे। तो बाबा कहते हैं अभी माइक नहीं लाए हैं, भले संपर्क अच्छा है, माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। चलते फिरते बाबा के प्यार का रिटर्न क्या देना है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। तो फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजाए, काफी लेट हो गया होगा, तो इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। क्योंकि यहाँ जब बाबा की मुरली चलती थी 7 बजे चलो मुरली जैसे चलती है, तो कई देशों में तो रात के 12 बजे होते हैं, जैसे हम, जैसे खास ऑस्ट्रेलिया में 12 बजे, न्यूजीलैंड, फिजी और वो जापान, तो बिल्कुल बहुत लंबा, लेकिन वो उस समय भी उठ करके बाबा की मुरली सुनते थे। और तो बाबा कहते हैं लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप, बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हरेक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। कल फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है, कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 8 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता, बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करे। कितना बड़ा काम बाबा देते हैं। आज 17 तारीख है, आज किया आज का अव्यक्त इशारा। सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता को श्रेष्ठ एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने सब बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे।